முதல் நாள் சுகோதர சாயம் மாசா இவனே சாத்திய மாசா
खोली है और देखा है कुछ भी नजर आया सिर्फ हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने जानने की कोशिश की, निकट लगता था कि ये पेड़ जो है पुराना मान है, ये क्या चीज है, मुझे नहीं पता। दोपहर का वक्त हुआ, खाना खाया और फिर वही सारे सिस्टर होती हैं वहां चले गए। वहां चले गई, शाम का वक्त हुआ, उन्होंने कहा मार्केट जाना है। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी वहां पर चल तो मैं क्या करना है। जब मार्केट पहुंचे, ये वो जो है मंत्री की कैफियात तैयार कर रहा हूँ जिससे ये चेंज आ रही है, मेरे अंदर चेंज आ रही है, अलग अलग मुझे हदायत दे रहा है। मैं जब मरकज पहुंचो रावत बिंदी, मैंने भी मजूर किया और तमाम बारिश लोगों को देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। जब मगरब की नमाज पढ़ी है, हजरत साहब ने नमाज पढ़ाई है, तो मैं दूसरी साफ में खड़ा हुआ। हजरत साहब ने जब की रात शुरू की है तो मेरा दिल जो है वो मोम होता चला गया, अंदर एक चीज सी आनी शुरू हो गई। बहुत सी भी रात मैंने सुनी है, आर्मी पब्लिक कॉलेज में राहुल बाहर एक अधिकारी थे जिसकी ग्राम सुनने के लिए दूर दूर से जनरल आया करते थे, लेकिन जब नमाज पढ़ी है तो मैं चेत होता गया। नमाज खत्म होने के बाद मैं भी जिले में बैठा रहा, ये नहीं पता रहा कि कैसे। उसके बाद मैं जब ये फारम हुआ, मैंने वही साहब से पूछा है कि ये साहब कौन है, उनका पता है। बाद में मुझे बताया कि ये हमारे साहब है। मैंने हजरत साहब क्या रहे थे सवाल हो रहे थे मिला, अगर वही साहब ने मेरा तार नहीं करवाया, उस दिन से हजरत साहब मेरा नाम मिला है। तो उसके बाद हजरत साहब ने थोड़ी सी हदायत की कि वहाँ पे कैसे रहना है। हम वापस आ रहे हैं, सुबह की फ्लाइट थी, वहाँ पहुँचे हैं, तो मुझे भी बड़ा शौक था हजरत साहब के साथ जिक्र में शामिल। हमारी रहायश 2009 के हज में इस फ्लाइट में तकरीबन 5 किलोमीटर के रास्ते थे। हजरत साहब का सलाम अलैकुम के साथ ही है। मैं जब हरम में पहुंचा हूं तो बहुत कुछ सोचा था और लोगों ने भी कहा था कि ये दुआ मांगनी है, ये दुआ मांगनी है। जब उतार पहुंचा और इंसान का लोग नजर पड़ी है, ये सब कुछ भूल गया। एक ही दुआ जो है वो मेरे जहन में आई है और वो जुबान से निकली है कि या अल्लाह मैं अंधा, मुझे नहीं पता कि सीधा रास्ता कौन सा है, मुझे उस रास्ते पे चला जिसका जिक्र नमाज में आता है कि इन सरात मुस्तकीम सरात लजी अन्नम ताला है ऐ मुहम्मद, जो तेरे नेक बंदों का रास्ता है जिन पर तुमने अपना इनाम दिया, ये दुआ मेरे से निकली है। और बार बार फिर ये पास के राम जी के प्रोग्राम की दी जाती है। अल्लाह ताला ने जो मेरी दुआ कबूल की और वही मेरे हजर साहब से मेरी मुलाकात हुई, वही फिर मैं हर अपने की तरह शाम हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये जिक्र कैसे किया जाता है, ये क्या है। जब पढ़ता था तो उस वक्त किताबों में पढ़ता था कि जितने उलमाए काम थे वो पहले दीनी तालीम हासिल करते थे, पहले रूहानी तालीम के लिए बुजुर्ग तालीम के पास जाते थे। मुझे इसकी समझ नहीं आती थी कि ये रूहानी तालीम क्या है। उस दिन मुझे पता चला, जब इस दिन में शामिल हुआ तो मुझे पता चला कि ये रूहानी तालीम है। फिर जब मैं जिक्र में शामिल हुआ मेरी कैफियत चेंज होती चली गई, मैं बेटे को पता चला गया, मुझे एक स्कूल सा मिलना है। मेरी दादी ने की, उस दिन से फिर मैंने तैयार किया है कि ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं इनमें एक भी ऐसा नहीं है कि जिसकी दादी, यही वो लोग हैं जिन जिनका जिक्र कुरान पाक में आता है, जो अल्लाह के नेक लोग हैं, नेक बंदे हैं। तो मैंने उसी दिन से जब दादी रखी, उसके बाद मैंने दादी वहीं से अल्लाह ने मुझे हदायत देनी शुरू की। फिर मैं वापस आया हूँ तो हजरत साहब से मिलने के लिए रावलपिंडी भी गया। हजरत साहब का बहुत प्यार है। फिर मुश्ताबाद के इस दबा में सबसे पहले होता है जो जो मैं इस जिक्र के अंदर शामिल होता गया हूँ, मुझे अजीब सा से सुकून मिला है जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मेरी कैफियत चेंज हो गई। मैं दिन रात रोता था कि यार ना मेरे फटी मेरे 40 साल उम्र के बाद काश ये बात ये पैदा करता पहले खत्म होता। मैंने अपनी इतनी जिंदगी जाया किया। फिर लाहौर में वहाँ पे आया, वहीं पे हजरत साहब के हाथ बैठ हुआ। फिर उसके बाद मैं इस दबाव में शामिल होता रहा। राहुल की भी एक दो दफा गए अपनी मसरूफियात उसे टाइम निकाल लिया। मसरूफियात की तरफ मैंने कोशिश किया कि काम और मैं देखा निशाना हूँ। मुझे तो वाक्य बयान करने का मौका कि मुश्ताबाद के इंतबाह में मैं भी गया हुआ था। इस साल जब हजरत साहब ने ऐलान किया है कि उम्रे पे जाना है और अप्रैल में, मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी अंदर से कि मैं एक दफा हजरत साहब के साथ उम्र में क्या मजा आया मुझे तो फील दे। लेकिन ये एक मुजज़ा ही है कि मुझे हजरत साहब के साथ ले गया कि मैंने अभी रिसेंटली मकान खरीदा था, मेरे पास पैसे नहीं थे। वहीं पे मुश्ताबाद का ऐलान हुआ, मैंने सुबह तहज्जुद के वक्त दुआ की मेरे लिए आसानी पैदा कर, मैं हजरत साहब के साथ जाना चाहता हूँ। आप यकीन करेंगे कि विद इन वन वीक, एक हफ्ते के अंदर मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की और 186,000 रुपया रिस्क हालात दिए। मैंने फौरन वही साहब को फोन किया, इस तरह मेरे पास पैसे जमा हुए हैं और मैं जाना चाहता हूँ। उस वक्त तमाम दोस्तों के पासपोर्ट जमा हो चुके थे। मैंने पासपोर्ट निकाला था तो पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था। इस साल के डीजे पासपोर्ट ऑफिस में होते हैं, उनसे बात की, पासपोर्ट मैंने जमा करवा दिया रिन्यूअल के लिए। इतनी देर में ये डेट गुजर चुकी थी। मैं फिर बड़ा परेशान हुआ, बड़ी दुआएं की याद ना कि मेरी इस दुआ को कबूल ना, अगर ये दिया है तो आप मुझे अंदर साहब के साथ उम्र के साथ वही साहब के भतीजे ने जो आए हुए हैं उन्होंने स्पेशल कोशिश करके मेरा पासपोर्ट निकलवाया। कुछ दिन लेट हुआ। फिर आप किसी की हिम्मत भी बढ़ती थी कि हजरत साहब से बात करें कि मुझे भी, मैं लेट हो गया हूँ, साथ शामिल हूँ। शाम को अगर बदर साहब ने प्रोग्राम बनाया कि अकरम साहब के पास चलते हैं, वो शायद आप इस बारिश करते तो काम बनाएगा। میں اور وحید صاحب، بدر صاحب نے لے کر اکرم صاحب کے گھر گئے ہیں، اکرم صاحب نے ڈرتے ہوئے بات کی، بڑی اجازت مل گئی۔ اس وقت جو خوشی کی انتہا تھی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تمام پاسپورٹ جمع ہو چکے تھے، صرف میرا پاسپورٹ رہتا جو میں نے اس پر میرا ڈیڑھ دن ڈی سی ایس کیا نا، چار پانچ دن بعد مجھے پاسپورٹ ملا ہے، پھر میں نے ڈی سی ایس کیا اور میرے اکیلے کا پاسپورٹ جو ہے بعد میں جمع۔ میں آخری دن تک ڈر رہا تھا کہ شاید مجھے موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ جب آخری دن فون آیا ہے پھر مجھے تسلی ہوئی ہے، میری ہوا میری دعا پہلے ہی قبول ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیگ مدد کی تھی حضرت صاحب کے ساتھ آنے۔ پھر میں حضرت صاحب کے ساتھ عمرے پہ وہیں سے روانہ ہوا ہوں ٹریول میٹنگ سے کراچی، ویزا نصیب ہوئی ہے مرکز میں لے کر کرنے کی، اس کے بعد پھر جدہ پہنچے ہیں۔ جدہ سے جب ہوٹل میں اور ہوٹل میں صبح 3 بجے حضرت صاحب کے ساتھ جب کار میں داخل ہوئے میں وہ کہہ کر کے بیان کرنے لگا، یہ وہ کیفیات ہے جو میں نے اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتائی۔ کہتے ہیں کہ ہر کافر پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے، حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ آنکھ جھپکنے تک، پلک جھپکنے تک جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ کو حیران ہو کے کہ ہم وادی عبدالعزیز سے داخل ہوئے ہیں، مطاف میں جب انٹر ہوئے ہیں، میں حضرت صاحب کے پیچھے تھا، چار پانچ قدم پیچھے تھا، میں تقریباً 5 منٹ تک وہاں پہ خانہ کعبے کے اوپر نظریں جمائے رکھا ہوں اور میری آنکھ نہیں چھپتی، پلک نہیں چھپتی۔ میں بڑا رویا ہوں اس وقت، اور کتنی دعائیں میں مانگ سکتا تھا جی بھر کے مانگی، اور پھر میں وہاں سے جب چلا ہوں تو میری آنکھ پھر پلک چھپتی، اور میں خود سوچتا رہا ہوں کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ممکن ہے۔ یہ سارا حضرت صاحب کی معیت کی وجہ سے ہر الگ پتھروں کا۔ پھر حضرت صاحب کے ساتھ عمرہ کیا ہے، عمرے کے ساتھ حضرت صاحب ہوئی ہے، پھر ذکر میں میں پوری اقبال وہاں پہ، اور کوشش کری ہے تو کوئی ایسے استاد کی نام یہاں پہ حضرت صاحب بار بار فرمایا کرتے تھے، حضرت شاہ صاحب بھی بار بار فرمایا کرتے تھے کہ وہ عام جگہ نہیں ہے، وہ عام جگہ نہیں ہے، وہاں پہ بڑی احتیاط سے چلنا ہے، بڑی احتیاط سے رہنا ہے، اپنی آواز بلند نہیں کرنی۔ خاص طور پر حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آپ حضرت صاحب کے ساتھ جا رہی ہیں، بڑے آدمی سے جانا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ان کو عدم کا نہیں پتا۔ حضرت شاہ صاحب نے بہت سمجھایا، گھر اسپیشل بلا کے میں بار بار اس چیز کی تاکید کی تھی کہ حضرت صاحب کے آپ ساتھ جا رہے ہیں، بڑے ادب سے رہ رہے ہیں وہاں پہ، وہ عام پہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم آخری زیارت کر رہے تھے، اس وقت بھی مندر صاحب کے پیچھے تھا، اس وقت بھی یہ کیفیات تھی میری کہ جب مطاف سے باہر نکلا ہوں تو میں بالکل مطاف میں نارمل تھا، جو ہی قدم باہر رکھا ہے حضرت صاحب کے ساتھ، حضرت صاحب جب منبر کے پیچھے دیکھتے تھے کعبہ کی طرف تو میرے بے اختیار اس وقت شروع ہوئی، اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جس طرح کچھ پیچھے سے کھینچ رہی ہے، वादे अब्दुल अजीज तक आते हुए देखकर याद की, मैंने थोड़ा सा दूर हट के मेरे पांव पर कांप रहे थे, अजीब सी कैफियत जिनको मैं नस्तु में बयान नहीं कर सकता। और होटल तक अल खलील होटल तक जो है मेरे लिए कैफियत रही, फिर आगे अदब साहब ने कहा कि बस में बिठाया फिर मदीने की तरफ रवानगी हुई है। मदीने पहुंचे हैं तो एक डर सा था, एक खौफ सा था कि ये तो बहुत ही अदब वाला मकाम है। अगर ऐसा साहब की बात है बार बार जेल में रबी होती थी कि वहां पे बड़े अदब से रहे हैं, बार बार फरमाया करते कि आम जगह नहीं है। मैं जिक्र में बड़े गौर से कोशिश करता था कि करीब बैठे और गौर से सुनो हर बात और उसका तू बड़ी इम्प्लीमेंट करा था। एक डर से लगता था कि ये आम जगह नहीं है, यहाँ पे कोई बेअदबी ना हो, कोई उस्ताद ना हो। और अल्लाह के लिए एहसान भी था कि हम नापाक लोगों को भी हजरत शाह साहब हजरत देव साहब के साथ हमें यहाँ पे जहाँ पे आज वसलम के कदम मुबारक लगे हुए हैं, सहाबा के कदम मुबारक, हम नापाक लोगों को भी अल्लाह ताला ने जैसे आदत दी है कि हम उस कदम पे आ सकें। हम तो चलने के काबिल भी नहीं थे, खड़े होने के काबिल भी नहीं थे, सही काबिल नहीं। अगर बेग साहब की मायनत में ये सब कुछ सीखा है, हजरत बेग साहब के साथ मुझसे गंदी में जब एंटर हुए तो उस वक्त की कैफियत नहीं बयान की जा सकती। मैं बजू खान में था तो बजू में किया था, मैं कैब बहुत कम पहनता हूँ। हजरत साहब ने फौर में दिखाया कि वो सब कैब था, मैंने फौर में दिखा दी कि ऐसे सब था। मैंने तो बहुत कर मैंने माफ़ी मांग कर रहा हूँ मेरे से उस्ताद, मैं अब से माफ़ी मांग लिए मैंने कि जानना मेरे से मजीद उस्ताद की ना, मैं बहुत पहली बहुत करना चाह रहा। अगर मुझे तोहफीक दी है कि आप पुराने हजरत साहब के साथ तो मुझे अदब करने के लिए तोहफीक, फिर हजरत साहब के साथ मैंने पीछे नमाज बार बार ये दुआ मांगता है, अदब सिखा। फिर मैंने कोशिश की है हजरत साहब के साथ ही लोग जब हजरत साहब बैठते थे इनके करीब जाकर बैठता था, थोड़े अदब के साथ पीछे जाकर बैठता, जो ये बुक देते थे कोशिश करते थे कि उसकी पाबंदी की जाए। और इस तरह हजरत साहब की नफीत में इतने दिन बिताए और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मुझे भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती तो मुझे अल्लाह ताला ने इस जमात में अपने नाम के लिए चुना है, इस जमात के साथ इन नेक लोगों के साथ। आखिरी तो मैं बहुत ही मुतासर हुआ हूँ जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो हजरत साहब इतने शरीफ हैं, कल मदर साहब फरमा रहे थे और दिल से आदमी करी थी आवाज कि ये हमारे माँ बाप समझ में ज्यादा प्यार करते हैं। माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे लिए एयरपोर्ट पे भी स्पेशल खाना बनाया हुआ था और वहां पे भी बार बार पहले खाना नमाज पढ़ो फिर खाना खाना पढ़ो सारे साथी खाना पढ़ो, इतनी फिक्र थी एक एक साथी के लिए, इतनी फिक्र थी। मैं हैरान होता हूँ कि घर में बाल बहन के अगर चार पांच बच्चे हैं तो सबको प्रॉपर तवज्जो नहीं दे सकता, और हजरत साहब की हर एक चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है उतनी ही नजर एयरपोर्ट
एयरपोर्ट पे जब हम पहुंचे हैं, लॉन्च में पहुंचे हैं, तो वहां पे एक अजीब सा मैंने वाक्य देखा है। वहां पे हमारे जहाज में एक कपल था, यंग कपल था, जो ही हम लॉन्च में एंटर हुए हैं, एक यंग फीमेल थी, वो अपने हस्बैंड को बुला के कहती है, इधर आओ इधर आओ, ये देखो ये कौन से लोग हैं, ये सारे बारिश लोग हैं, ये देखो ये अल्लाह वाले लोग हैं। मैं बेख्तियार उस वक्त रो पड़ा था उसके बात सुन के, ये एक आम है, इसका तल्ले की नहीं है जमात के साथ, लेकर ये भी जानती है कि ये लोग अल्लाह वाले लोग, ये सारे बारिश लोग हैं, ये अल्लाह के नेक लोग हैं। मैं उस वक्त बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस हकीर इंसान को भी, जो गुनाहों में डूबा हुआ है, उसको भी हजरत देख सकते हैं जगह दे, और मेरे इस्लाम मैं बहुत स्कैटर बन सकता, बहुत इतना हुआ इस्लाम। जब हजरत साहब की खिदमत में आया हूँ तो मैं अपने आप को डे बाई डे रोज रोज अपने आप को स्ट्रीम लाइन करता चला जा रहा हूँ। ये सब इनका नफर कर्म है, ये दुआएं, ये शफकत है, अब प्यार है, मोहब्बत है, और ये इतनी बरकत है। तो ये मेरी कैफियात है जो मैं दो ढाई साल में इसके बाद में एंटर हुआ है, और मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ बार बार जो है वहाँ पर भी अल्लाह से हजरत शाह साहब और हजरत बेग साहब की लंबी उम्र और सेहत की दुआएं मांगी। मैंने कहा या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक क्या मत नहीं आती उस वक्त तक हजरत बेग साहब को हजरत शाह साहब को जिंदा, इनको जिंदगी अथा फरमा और इनको लंबी उम्र और सेहत अथा फरमा, इनकी जरूरत है। हाल में इस्लाम जितने भी लोग हैं दुनिया में, आने वाले लोगों को भी इनकी जरूरत है। तो अब भी जब भी नमाज पढ़ता हूँ तो मैं यही दुआ मेरे मुंह से निकलती है, मेरे प्यार निकलती है कि या अल्लाह हजरत शाह साहब को और हजरत बेग साहब को लंबी उम्र अता फरमा और इन पर सेहत अता फरमा, ताकि हम जैसे हकीर गुनहगार लोगों की इस्लाह हो सके। हम इस काबिल तो नहीं है कोई लफ बयान कर सके जो है, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है हजरत साहब 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 से, अल्लाह ताला इनकी इनको लंबी उम्र दे जो है और सेहत कामला का। मुझे डर से लगा रहता है कि अल्लाह ताला जो है ये कहीं हमारे से जैसे कि नेमत छीनना। तो आप लोगों से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि हजरत शाह साहब और हजरत बेग साहब की लंबी उम्र की दुआएं की जाए, क्योंकि अभी बहुत जरूरत है। सलाम
माशाल्लाह। बड़ा दर्द वाक्य सुनाया सारा उन्होंने, बिल्कुल अमोल है और सबक अमोल, और किसी को पढ़ाने खाश नहीं मिल रहा, सारा सबक कर दिया। कौशल साहब आयो, कौशल साहब माशाल्लाह हमारे एस पी साहब जो पहले अमीर के गाँव की बात हुई, उनके बेटे हैं, बड़े बेटे हैं माशाल्लाह, और अमेरिका से इसी गर्ज के लिए आते हैं कि जमात के साथ उम्र भी जाए रहे, ये घर माशाल्लाह बड़े तमाम का जाते हैं।
ظاہر بات تعلیم و تربیت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتنا سفید حاصل کر لیا جائے تو بہتر ہوگا، لیکن ہمارے لیے کمزوری ہے کہ ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں ہم سب ساتھیوں کے لیے، ویسے تو ہم بڑا دعویٰ کرتے ہوئے ہیں مطلب یہ قتل کر دیے وہ قتل کر دیے, لیکن جیسے ہی مطلب ہمارا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارا پاس جانے والا ہوتا ہے کہ ہمارا کیا لفظ ضبط ہے, کیا ہمارے حالات ہیں, کیا ہمارے کیفیات ہیں, کس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں, عجیب ہی حالت ہو جاتی ہے. ہم سب کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت کی جو جتنی بھی ان کی تعلیمات ہیں اس پہ عمل کریں, توفیق عطا فرمائیں اور جو باتیں وہ بتاتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس مرتبہ بھی عمرے کا حضرت کے ساتھ اتفاق ہوا, جیسا حضرت فرمایا کہ ساری دنیا سے جماعت جمع ہوئی ہوئی تھی, انڈیا کے ساتھ تھی, امریکہ کے ساتھ تھی, آسٹریلیا کے ساتھ تھی, انگلینڈ کے ساتھ تھی, پاکستان ہندوستان کے ساتھ تھی, اور بہت جگہ تھے, علماء اکرام کے منظر بنگلہ دیش کے پورے علماء اکرام یہاں تھے. شروع میں نے دیکھا کہ جیسے حضرت فرمایا کہ مفتی مجاہد صاحب انڈیا کے آئے تھے, شروع میں کافی